पहला इतिहास अध्याय 11। अध्याय 11 में दाऊद राजा बनता है। अध्याय 11 पद 1। तब सब इसराइली दाऊद के पास हेब्रोन में इकट्ठे होकर कहने लगे। सब लोग इकट्ठे हो गए, सारे गोत्रों से बहुत लोग दाऊद के पास जमा हो गए। हजारों की संख्या में लोग हेब्रोन में जमा हुए। सब शूरवीर और युद्ध करने वाले सब जमा हुए और उन्होंने दाऊद से कहा। अध्याय 11 पद 1 और 2। सुन, हम लोग और तू एक ही हड्डी और मांस है। बीते दिनों में जब शौल राजा था तब भी इसराइलियों की अगुआ तू ही था, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझसे कहा कि मेरी प्रजा इसराइल का चरवाहा और मेरी प्रजा इसराइल का प्रधान तू ही होगा। परमेश्वर की ओर से दाऊद को दोहरी आज्ञा मिली। पहली, तू मेरे लोगों को चराएगा और तू उन पर शासन करेगा। दाऊद को परमेश्वर के मन का मनुष्य कहा गया है, क्योंकि उसमें चरवाहे का हृदय था। वो एक चरवाहा था जो राजा बना। जिस पृष्ठभूमि से वो आया था उसी के कारण वो एक आदर्श राजा बना, क्योंकि उसका लगाव सदा भेड़ों से रहा था, और वास्तव में भेड़ की मूल जरूरत होती है कि उसे चारा मिले। नए नियम में इसी विचार को यीशु मसीह ने आगे बढ़ाया जब उसने पत्रस से कहा, यूहन्ना 21 अध्याय 16 पद, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हां, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। बाद में पत्रस ने लिखा, पहला पत्रस 5 अध्याय 2 पद, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। यरमिया में परमेश्वर कहता है, यरमिया 3 अध्याय 15 पद, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। और ये आज्ञा दाऊद को दी गई थी कि राज्य करते हुए वो परमेश्वर की भेड़ों को चराए। ये पादरियों के लिए कितना आवश्यक है कि वे लोगों को ज्ञान और बुद्धि की शिक्षा दे या भेड़ों को चराए। अध्याय 11 पद 3। इसलिए सब इसराइली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने शमूएल से कहा था इसराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। उन्होंने उसका ये अभिषेक दूसरी बार किया। वे इससे पहले भी उसका अभिषेक कर चुके थे। अध्याय 11 पद 4 और 5। तब सब इसराइलियों समेत दाऊद यरूशलेम गया, जो यबूस भी कहलाता था, और वहां यबूसी नाम उस देश के निवासी रहते थे। ये वे यबूसी थे जो यरूशलेम नगर में वास कर रहे थे। तब यबूस के निवासियों ने दाऊद से कहा, तू यहां आने नहीं पाएगा। और दाऊद ने उत्तर दिया, तुम ऐसे सोचते हो कि मैं आने ना पाऊंगा? अध्याय 11 पद 5 से लेकर 7 तक। तब दाऊद ने सियोन नाम गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। और दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को सबसे पहले मारेगा वो मुख्य सेनापति होगा। तब सरूयाह का पुत्र योआब सबसे पहले चढ़ गया और सेनापति बन गया, और दाऊद उस गढ़, उस समय के यरूशलेम के उत्तरी क्षेत्र के ढलान में रहने लगा, इसलिए उसका नाम दाऊदपुर पड़ा। अध्याय 11 पद 9। और दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई और सेनाओं का यहोवा उसके संग था। दाऊद की प्रतिष्ठा का भेद ये था कि सेनाओं का यहोवा उसकी ओर था। यहां दाऊद के वीर पुरुषों के नामों की सूची है, और सबसे पहले यशोबाम का नाम आता है। पद 11 में वो अधिकारियों में प्रमुख था। दूसरे अभिलेखों में दाऊद के इस प्रधान यशोबाम के बारे में कुछ वर्णन नहीं मिलता, जबकि वो बड़ा शूरवीर था, क्योंकि एक युद्ध में उसने अपना भाला उठाकर 300 लोगों को मार डाला था। मेरा मतलब एक ही युद्ध में 300 आदमी मार डाले। ऐसे व्यक्ति से छेड़छाड़ करना उचित नहीं। उसके बाद भी तीन शूरवीर, जिनमें योआब प्रथम, दूसरा यशोबाम और तीसरा एलियाजर था, वो तीनों में से एक था। अध्याय 11 पद 13। वो पस दमीम में, जहां जव का एक खेत था, दाऊद के संग रहा जब पिलिस्ती वहां युद्ध करने को इकट्ठे हुए थे और लोग पिलिस्तियों के सामने से भाग गए। दाऊद और उसके साथियों ने जौ के इस खेत में खड़े होकर पिलिस्तियों से युद्ध किया और उन्हें हरा दिया। अध्याय 11 पद 14। और यहोवा ने उनका बड़ा उद्धार किया। दाऊद बहुत रोचक पुरुष था। उसके व्यक्तित्व में बहुत कुछ ध्यान देने योग्य है, क्योंकि वो एक मनुष्य था और हमारी तरह समस्याओं और परीक्षाओं में पड़ता था। दाऊद किसी भी तरह एक सिद्ध मनुष्य नहीं था। वास्तव में उसने कुछ ऐसा कार्य किया था कि वो परमेश्वर के भवन को न बना सका, जबकि हृदय से वो परमेश्वर के लिए ऐसा करना चाहता था। तो भी वो चाहने योग्य व्यक्ति था, और यहां पिलिस्ती उस पर आक्रमण कर रहे हैं, सब भाग गए और दाऊद और एलियाजर ने उस खेत के बीच में खड़े होकर पिलिस्तियों को मारा। यहां कुछ और महान पुरुषों के नाम दिए गए हैं। यहां बताया गया है कि वे अब्दुल्लाम की गुफा के पास थे और पिलिस्तियों की सेना ने रपईम नाम तराई में अपनी छावनी डाली। अध्याय 11 पद 16 से लेकर 19 तक। उस समय दाऊद गढ़ में था और उस समय पिलिस्तियों की एक चौकी बेतलहेम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेतलहेम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा? तब वे तीनों दाऊद के साथी जन पिलिस्तियों की छावनी में टूट पड़े और बेतलहेम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए, परंतु दाऊद ने पीने से इनकार किया। दाऊद को उनके इस काम पर विश्वास नहीं हो रहा था और यहोवा के सामने अर्ध करके उंडेला, क्योंकि वे अपनी जान खतरे में डालकर और खून बहाकर पानी लाए थे। इसलिए दाऊद ने उस पानी को परमेश्वर को ही चढ़ा दिया था। इसलिए उसने पानी यहोवा के सामने अर्ध करके उंडेला। उसने स्वयं को वो पानी पीने का योग्य नहीं समझा। उसने सोचा, जो अपने प्राणों पर खेलकर पानी लेकर आए हैं, उसे मैं यहोवा को दूं तो अच्छा होगा। इसलिए उसने उसे परमेश्वर के सामने अर्ध करके उंडेला। अध्याय 11 पद 19 से लेकर 21 तक। और उसने कहा, मेरा परमेश्वर, ऐसा करना मुझसे दूर रखे। क्या मैं इन मनुष्यों का लहू पीऊं जिन्होंने अपने प्राणों पर खेला है? ये तो अपने प्राण पर खेलकर उसे ले आए हैं। इसलिए उसने वो पानी पीने से इनकार किया। इन तीन वीरों ने ये ही काम किए। और अबिशै, जो योआब का भाई था, वो तीनों में मुख्य था, और उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में नामी हो गया। दूसरी श्रेणी के तीनों में वो अधिक प्रतिष्ठित था और उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। दूसरी श्रेणी के तीनों में बनायाह ने अबिशै के साथ बहुत कार्य किए, उसने मोआब के दो लोगों को मारा जो शेर के समान थे। वो शायद झाड़ी समान बालों और दाढ़ी वाला पुरुष था। अध्याय 11 पद 22 और 23। यहोयादा का पुत्र बनायाह था जो कब्जेल के एक वीर का पुत्र था जिसने बड़े बड़े काम किए थे। उसने सिंह समान दो मुआबियों को मार डाला और हिम ऋतु में उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। फिर उसने एक डील वाले अर्थात 5 हाथ लंबे मिस्री पुरुष को मार डाला। वो मिस्री हाथ में जुलाहों का ढेका सा एक भाला लिए हुए था, परंतु बनायाक एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से भाले को छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। और वो दूसरी श्रेणी के शूरवीरों में से एक हो गया, परंतु पहली श्रेणी के शूरवीरों की तरह नहीं। इसके बाद दाऊद के और 30 शूरवीर थे। वे वास्तव में विशेष पुरुष थे और इसलिए उनके नाम विशेषकर यहां दिए गए हैं।